भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भज दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरहु रे भव सिंधु रे तरहु भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन सीता तप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागिरे सीता विफले से बिनु कृपण दुर्जन विफले चपल सुख लाभ लागिरे चपल भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीति रे धन कमल दल जल जीवन टलमल कमल भजहु हरि पद नीति रे भजहु भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पद सेवन दास रे श्रवण पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन गोविंद दास भिलास रे गोविंद भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಜಮುನಾ ತೀರ ಬನ ಚಾರಿ ಜಮುನಾ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಜಮುನಾ ತೀರ ಬನ ಚಾರಿ ಜಮುನಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೌರ ನಿತಾಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಲಲಿತಾ ವಿಶಾಖಾ ಜಯ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತೋಶೇ ಶ್ರೀಮತ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇ ಸಭೈ ಚರಣ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೀ ಜಯ. ಪ್ರೇಮ್ ಸೇ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸಾಧಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿ ಗೋಪಿನಾಥ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಶ್ಯಾಮ ಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಿ ಜಯ. ಮಥುರಾ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕಿ ಜಯ. ನವದೀಪ್ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ್ ಕಿ ಜಯ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಧಾಮ್ ಕಿ ಜಯ. ಗಂಗಾಮಯ್ಯ ಜಮುನಾಮಯ್ಯ ಕಿ ಜಯ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ. ವೃಂದಾದೇವಿ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ನಿತಾಯ ಕಿ ಜಯ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಲಲಿತಾ ವಿಶಾಖಾದೇವಿ ಕಿ ಜಯ. ಸಮವೇತ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ. ಸಮವೇತ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ. ಸಮವೇತ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಸಾಧ್ಯ ಆಠೈ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅವದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮುಪಗತಿ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಭೀಷ ಕಳೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶ ಪುರಾಣಾರ್ಕ ಧುನಾ ಉದಿತಃ. श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 8 श्री क्षीरसागर का मंथन। इस अध्याय के आज 22 नंबर और 23 नंबर श्लोक है। 22 नंबर श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, 23 में छोटा तात्पर्य है, तो 23 को साथ में बोलेंगे, 22 में पढ़ लेता हूँ। क्वचि चिरायु नहि शील मंगलम क्वचि तदप्यस्ति न वेद्यम आयुष यत्रो भयं कुत्र च सोपि मंगल सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमाम। हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमयता तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं है, नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती है, यथा श्मशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त नहीं होते। अभी सब लोग साथ में 23 नंबर श्लोक साथ में पढ़ेंगे। एवं विमृश्य अव्यभिचारी सद्गुणी वरम निज एक आश्रयतया अगुण आश्रयम वप्रे वरम सर्वगुणी अपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम एवं विमृश्य अव्यभिचारी सद्गुणी वरम निज एकाश्रयतया गुण आश्रयम बब्रे वरं सर्वगुणैरुपेक्षितम् रमा मुकुन्दं निरपेक्षम् ईप्सितम्। एवं विमृश्य व्यभिचारी सद्गुणैः वरम निज एक आश्रय तया गुण आश्रयम बब्रे वरं सर्वगुणैरुपेक्षितम् रमा मुकुन्दं निरपेक्षम् ईप्सितम् एवं विमृश्य अव्यभिचारी सद्गुणै वरं निज एकाश्रयतया गुणाश्रयम् बब्रे वरं सर्वगुणैरुपेक्षितम् रमा मुकुन्दं निरपेक्षम् ईप्सितम्। माताएं शब्दार्थ एवं इस तरह विमृश्य विचार विमर्श के बाद अव्यभिचारी सद्गुणी अद्वितीय दिव्य गुणों से वरम श्रेष्ठ निज एक आश्रयतया अन्य पर आश्रित न रहकर समस्त गुणों से युक्त होने के कारण अगुण आश्रयम समस्त दिव्य गुणों के आगार बब्रे स्वीकार किया वरम दुल्हे के रूप में सर्वगुण ही समस्त दिव्य गुणों के साथ अपेक्षितम योग्य रमा भाग्य की देवी से मुकुंदम मुकुंद को निरपेक्षम यद्यपि उन्होंने उसकी प्रतीक्षा नहीं की इप्सितम सर्वाधिक वांछनीय अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों में से युक्त हैं अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। दोहराइए श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य के देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी वे समस्त दिव्य गुणों और जो शक्तियों से युक्त हैं अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग कई दिनों से श्रवण कर रही आठवां स्कंध है। पहला स्कंध पहले स्वर्ग विसर्ग अतः स्वर्ग विसर्ग से पोषण स्थानमुतय मनोन्तर ईशानों का था निरोध मुक्ति आश्रय। अभी हम कहाँ तक पहुंचे ये कौन सा चल रहा आठवां स्कंध विशेष रूप में किसका चर्चा हो रहा मनोन्तर मनोन्तर कौन सा मनोन्तर अभी चल रहा है वैवस्वत मनोन्तर लेकिन इस समुद्र मंथन कौन सा मनोन्तर के शासन काल में हुआ था है छठा मनोन्तर है इसके पहले चाक्षुष मनोन्तर के समय में चाक्षुष मनोन्तर में ये समुद्र मंथन चल रहा था। कौन कौन समुद्र मंथन कर रहे थे देवता और असुर उसमें भगवान भी भाग लिए थे लेकिन क्योंकि दुर्वासा के विषय के कारण देवता लोग नहीं पड़ा, प्राय निष्क्रिय जैसे हो गए थे, शक्ति बलहीन हो गए थे। इसलिए बलि महाराज के नेतृत्व में राक्षस लोग ने स्वर्ग को आक्रमण करके आसान से देवताओं को पराजय कर दिए। इसलिए देवता लोग ने सिहीन हो गए थे, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा इनको लेकर भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने इनको ये सलाह दिए थे क्या करने के लिए, समुद्र का मंथन करने के लिए। बोले अभी तुम आप लोग, क्योंकि ब्रह्म अभिशाप, आप लोग को ब्राह्मण के अभिशाप है और उनको ब्राह्मण के आशीर्वाद है, शुक्राचार्य जी इनके गुरु के विशेष आशीर्वाद के बल पर आए, वो लोग विजेता हो रहे हैं, उनको आप अभी पर्याप्त पराजय नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान ने इनको अही मुसी का न्याय की आए बताया कि आप लोग संधि करो, संधि कर लो, अभी आप लोग तो बल से इनके साथ युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए समुद्र मंथन की लीला, क्योंकि भगवान को भी इसमें लड़ा करने की इच्छा था थोड़ा दिन है, कुछ लीला में भी भाग लेने में इनको भी आनंद आता था, आनंद की आवास था। इसलिए भगवान ने ये प्रोपोजल दिए, कहे कि चिंता मत करो, दुखी मत हो, तुम अल्टीमेटली समुद्र मंथन करने से जो लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, अमृत आप लोग को ही पीवो, है मैं आप लोग को ही पिला दूंगा, इसलिए आप समुद्र मंथन का जो प्रपोजल लेकर जाओ राक्षस को बोलो। इसलिए बोली महाराज मंत्र द्रुम, उस समय इंद्र थे, मंत्र द्रुम नाम के इंद्र थे, इंद्र का नाम इंद्र था, एक पोस्ट है, और राक्षस के राजा कौन थे, बोली महाराज, दोनों में संधि हो गया। और बोले ऐसे वो कथा सारे आप लोग शुरू से श्रवण करके आए हैं, प्रकृति में वो तो पहले मंदर पर्वत को उठा के लाए के रखे हुए, तो भगवान स्वयं ही उठा के लेके आए, क्योंकि इनके द्वारा नहीं हुआ ना, देवता राक्षस लोग को उठा के लाते, बीच में तो पहले सभी वो पर्वत भी गिर गया, ये भी सब कुछ लोग उसके अंदर में पिस गए हैं। फिर भगवान ने स्वयं गरुड़ पीठ में मंदर पर्वत को लेकर आकर खीर सागर के बीच में रखे, गरुड़ को फिर वहां से विदाई दिए, और फिर मंदर पर्वत को रखने से फिर नीचे डूब रहा था, इसलिए नीचे से फिर कूर्म के रूप में भगवान बैठे, उनके पीठ पर मंदर पर्वत था। वासुकी नाग को बुलाकर इनके मंथन की रस्सी बनाए, जब मंथन अरे नीचे कोई सपट नहीं था, इसलिए तो कूर्म भगवान बैठ गए, फिर भी हल रहा था, इसलिए ऊपर में फिर भगवान अजीत है हजार भुज वाले रूप धारण कर ऊपर में बैठ के इसको फिर सपोर्ट दिए। फिर मंथन कार्य शुरू हो गया, देवता लोग ने सबसे पहले देवता और भगवान ने देवता के पक्ष में भगवान भी खड़े थे, जाकर वासुकी नाग की मुख की तरफ पकड़े, तो राक्षस कहे आ गए, कहे कि हम क्या कुछ निकम्मा है, थोड़ी निकम्मा है, हम कुछ कम है ना क्या, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। भगवान जानबूझ कर ऐसे किए थे, क्योंकि ये जो भगवान करेंगे देवता लोग बोलेंगे ठीक, उल्टा बोलेंगे कौन, राक्षस लोग है। तो इसलिए भगवान ने बहुत आसान से फिर देवताओं को कहे कि पूछ तरफ चले जाओ, ये मुख तरफ। आज जो मंथन होने लगा, सारे वासुकी क्या जितनी विष निकाल रहा था मुंह से, ये सब राक्षस लोग के ऊपर इसका प्रभाव अधिक पड़ता था। मंथन में सबसे अब मंथन शुरू हो गया, फिर पहले हड़हाड़ विष निकला, इसको शंकर जी ने ले लिए, सब आलोचना हो चुका था। इसके बाद क्या निकला था, फलाल बाघ कामधेनु गाय निकला। भगवान ने राक्षस की तरफ देखे, कहे कि ले गाय लोगे, ले लो। बोले नहीं, हमको गाय नहीं चाहिए, राक्षस तो गाय को काट के खाते हैं, सो क्या करें गाय, लेकिन कामधेनु गाय की महिमा वो कहाँ समझेंगे। फिर भी भगवान ने, देवता लोग तो कुछ नहीं बोलते थे, भगवान ने इनको चुप करी पहले रखा था, कुछ नहीं बोलना, तुमको केवल असली जो समुद्र मंथन की जो लाभ वो तुमको मिलेगा क्या, अमृत, इसका पहले कुछ नहीं बोलना, चुप बैठे थे। तो भगवान कहे कि चलो पहला कमाई का कम से कम दान कर दो, ऋषि मुनि तुमको दान दे दो, ऋषि मुनियों को दे दो इसको, ऋषि मुनि लोग हर्षित होकर इसको ले लिए, क्योंकि उनको सब कामधेनु गाय से सब कुछ मिल गया, दूध दही घी जो कुछ चाहिए कामधेनु गाय सब कुछ दे सकते। तो इसलिए यज्ञ आदि करने के लिए पहला सबसे पहला जो समुद्र मंथन से जो कामधेनु गाय को उन्होंने ऋषि मुनियों को दे दिए। दूसरे में क्या निकला, घोड़ा, उच्च स्रवा घोड़ा, उसको कौन ले लिए, बड़ी महाराज ले लिए। इसके बाद फिर ऐरावत निकला, ऐरावत ने ऐरावत जो इंद्र की बहन बना वो ले, राक्षस लोग उसको भी लेना चाहे, भगवान कहे कि नहीं आप लोग ले चुके हैं, आपका टर्न गया है, आप घोड़े लिए, अभी हाथी इनको मिलेगा। तो एक हाथी नहीं था और भी कई हाथी आ गए, तो इसलिए विश्व गजन जो ऐरावत तो इसके साथ और कई आठ दस हाथी और थे, वो सब किनको मिला, वो भी देवतालों के लिए। इसके बाद कौस्तुमणि निकला, फिर राक्षस बोलते हमको हम लेंगे कौन सा कौस्तुमणि, लेकिन भगवान कहे कि नहीं मैं भी कुछ किया कि नहीं, मेरा तो कुछ भी, मैं भी तो कुछ आप लोग के मंथन में कुछ सहायता किया कि नहीं, सो देखिए समझ गए, नहीं तो डूब जाए, भगवान जो सहायता नहीं करते तो कहां से समुद्र मंथन होता था। इसलिए भगवान ने भी ला कर रहे थे सही कौस्तुमणि के, कौस्तुमणि वो ले लिए। इसके बाद फिर कौस्तुमणि के बाद फिर पारिजात की मुखिया निकला, राक्षस को देखिए भगवान को अभी आपका टर्न है, ले लो ये पेड़ ले लो, पारिजात का वृक्ष ले लो। बोले हमको मुख्य भक्के राक्षस तो वृक्ष काटते हैं, गाय पेड़ ये सब हमको नहीं चाहिए, चलो पारिजात वृक्ष हमको नहीं चाहिए। भगवान के इंद्र देखे कि ठीक है, इंद्र ने लिया पारिजात पुष्प, पारिजात पुष्प का वृक्ष को ले लिया स्वर्ग में। तो इसके बाद अप्सराएं निकले, अप्सरा निकले तो एक है हम लेंगे कौन, राक्षस लोग भगवान कहे कि आपका टर्न चला गया ना, आपका टर्न आप ले लिया नहीं, पेड़ लेना है ले लो, तो आप फिर लेने आपको पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ नहीं ले तो फिर ये तो इनका टर्न है, देवताओं की टर्न है। इसलिए अप्सरा से कौन ले लिया, वो भी सब देवताओं देवलोक में चले गए। अभी क्या निकला, अभी लक्ष्मी नहीं नहीं है, तो वो लास्ट में निकलेंगे, लक्ष्मी के बाद निकलेंगे, बारूणी आएगी, फिर बारूणी की बात जाकर सब धन्वंतरी और अमृत कलश है। तो अभी लक्ष्मी जो आ गए तो टर्न भी किसका, भगवान का ही टर्न है, सबका टर्न आ रहा है ना। तो अभी लक्ष्मी जब निकली तो इनको इंद्र ने सब आलोचना हो चुकी है लड़ी, खीर सागर के मंथन से लक्ष्मी निकली, इसलिए खीरब्धि तनया रमा, इनको खीर सागर की कन्या का कन्या कहते हैं। तो लक्ष्मी की प्रभाव को देखकर सभी लोग मोहित हो गए हैं। लक्ष्मी को आसन दीजिए, पहले आली के आसन कौन दिया बैठने के लिए, इंद्रणी का आसन दिया है, और अभिषेक अभिषेक आरंभ हो गया, गंगा जमुना पवित्र नदियां मूर्तिमंत होकर सब स्वर्ण कलश में पानी लेकर आने लगे, और विशेष रूप में गजेंद्र जो ऐरावत हाथियां सब जो अभी भी समुद्र मंथन से निकले थे, वो भी सब अपने सुंड से सुंड के सहारा से पानी पानी लाए, अपना दिव्य जल को लाए, और इसी प्रकार लक्ष्मी जी का अभिषेक तो संपन्न हो चुका है, और भिन्न भिन्न सब लोग कुछ कुछ इनको अभिषेक सहायता, सब देवता लोग ने अलग अलग वस्तु दिए, लेकिन अभी जो अभिषेक होने के बाद इन जो वस्त्र तो वस्त्र अलंकार वस्त्र समुद्र ने वस्त्र दिया इनको, और अलंकार सब कुछ समुद्र वरुण देव से कुछ कुछ विश्वकर्मा जी ने भी अलंकार अर्पण के सब श्रृंगार होने के बाद वर्णमाला हाथ में लेकर लक्ष्मी जी ने किसी को वर्णमाला पहनाने के लिए किसी को पति रूप में चुनने के लिए आगे बढ़ने लगे। वर्णमाला कौन दिया उनके हाथ में, माला कौन दिया था लक्ष्मी को, लक्ष्मी के माला कौन दिया, वरुण देव ने माला दिया है, वरुण देव ने हाथ में माला दिया था, माला दिया था कमल का फूल तो ब्रह्मा जी ने दिए है, ब्रह्मा जी कमल फूल दिए थे। तो जो भी है तो माला वरुण माला को हाथ में लेकर लक्ष्मी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि ये स्वयंवर कई प्रकार की होती है, लेकिन लक्ष्मी तो ऐसा ही चिरसंगिनी है, किसकी, नारायण की है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी के जन की चिरसंगिनी है, कि इन्हीं के समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकला तभी शादी हुआ भगवान के, लक्ष्मी अनादि काल से ही उनकी शक्ति है, इनकी भगवान की शक्ति है, सदा भगवान के साथ रहती है। जैसे भगवान ने स्वयं वैकुंठ छोड़ के आके लीला के लिए इधर आके कौन थोड़ा खीर सागर मंथन में भाग लिए हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी ने भी कुछ लीला में भाग लेने के लिए उनकी भी इच्छा हुई, कि भगवान की विशिष्टता को बताने के लिए उन्होंने एक इस प्रकार अभिनय की, कि बताने के लिए जो सभा में जितने सो बैठे हो, जितने सारे बैठे, जितने मुनि ऋषि देवता है और राक्षस असुरगण, जितने भी दिग्पाल प्रजापति, जितने भी सारे बैठे हुए, ये समस्त में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कौन है? इसको एक लीला में है, एक लीला बस इसको प्रमाणित करने के लिए एक ये सही परिवेश को सृष्टि की गई है। लक्ष्मी ने पहले तो वर्णमाला लेकर पहले पिछले श्लोक में सब देखे, वो चुनते रही सारे देव, पहले सब सभी जितने भी मनुष्य थे, सभी मनुष्य को सभा के निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी ने इस प्रकार सोचा कि जी महान तपस्वी है, उसमें अभी तक क्रोध की विजय नहीं पाई, ऐसा कौन तपस्वी है जिसका तो बहुत तपस्या के लेकिन क्रोध को नहीं जीता, कौन है? दुर्वासा, वो कोई पिछले क्लास में कोई एग्जाम्पल दिया होगा और कोई भगवान शंकर जी क्रोध को जीत लिए हैं, जो बैठे थे कंदर पर आया, कामदेव आया गया उनका तपस्या को तोड़ने के लिए, क्रोध आया ना, काम को तो जीत लिए लेकिन क्रोध प्रकट हो गई है तभी। तो इसलिए उन्होंने कहे कि किसी के पास ज्ञान है तो बहुत अधिक भौतिक इच्छाएं जीत नहीं पाया, किसके पास में ज्ञान है भौतिक इच्छा नहीं जीता, इनका कौन सा उदाहरण है? देवताओं में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति तो फिर बृहस्पति के ज्ञान का जो भौतिक इच्छा जितनी है जीत नहीं पाए, कैसे? वो अपने क्या छोटे भाई के पत्र के साथ भी संभोग करने की इच्छा प्रकट कर गए उनके मन में। ऐसा ही ज्ञानी में भी सबसे प्रकृत में ज्ञानी किसको कहते हैं? भगवान कहे कि कवि नाम मसुना कवि, मसुना कवि कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी बहुत ज्ञानी है लेकिन भौतिक इच्छा को वो भी जीता नहीं है, भौतिक इच्छा जीत नहीं पाया। कोई महान पुरुष है तो उनकी कामेच्छाएं नहीं जाती है, कामेच्छा को जीते नहीं। कई लोग महापुरुष बहुत है, ब्रह्मा जी ने भी कभी भागे किनके पीछे? अपने पुत्र के पीछे, कामेच्छा को जीतना इतने आसान नहीं। पूरे भागवत में कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कामेच्छा को जीत लिया है, सभी का उदाहरण देखा जाता तो कुछ ना कुछ सभी के मन में कामेच्छा है। कहले केवल नारायण ऋषि, जो नारायण ऋषि जो बद्री का आश्रम में स्वयं भगवान जब आगे तपस्वी बने तभी वो काम इच्छा को जीत सके। स्वर्ग में जितना अप्सरा ने जितने सो अप्सराओं को भेजा इंद्र ने भगवान की तपस्या तोड़ने, अब भगवान ने भगवान के मन में किसी पर काम आसना को जागृत तो नहीं कर पाया, वरन भगवान के शरीर से सब और दिव्य अप्सराए निकले के सब निकले ना, तो वो जो स्वर्गों की अप्सरा उनके सामने तो बंदरी तरफ देखने लगे, सो भाग गई वहां से, बोली हरी ये तो इतना अप्सरा इसके शरीर से ही निकाल रहे हैं। भगवान ने थोड़ा बोले तो क्रोधित हो गए, अब तो बड़ा डर गए थे, कंदर पे बोला तो शंकर जी के पास गए थे तो जला दिया था पूरा, तीसरा नेत्र खोल के अभी क्या होने वाला है, भगवान मुस्कुराए मुस्कुराए के उनको बोले कि चलो वो अज्ञान है इंद्र, उसे पता नहीं, आप ले लो इसमें से एक अप्सरा जिसको चाह ले लो, इसको भेंट दे दो, लेके बोलो कि मैं इसको भेंट दिया किसको? श्री भगवान की जो वो शरीर से जो इनके अंग से जो अप्सरा निकलती है वो कौन? उर्वशी। इसलिए स्वर्गों की जितनी अप्सरा वो सबसे सुंदरी है, इसलिए उन्होंने लेकर का उनको भेंट दिए थे। इसलिए काम को जितनी इतनी आसान नहीं है, महान पुरुष हो सकता है लेकिन कामेच्छा को नहीं जीता है। महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित भी रहता है फिर भी परम नियंता कैसे हो सकता है? सब लोग किसी ना किसी के ऊपर आश्रित है संसार में, केवल भगवान किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, स्वतंत्र है। भागवत की पहला श्लोक कहता है कि 108 है वो स्वतंत्र है, जन्मादस्य जतः इतरतः चार्थेषु अभिज्ञ 108 है। इसलिए भगवान केवल स्वतंत्र है। इसके बाद कहते कि कोई धर्म के मार्ग पर भले किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता है, कौन ऐसा? धर्म का ज्ञान है लेकिन जीवन के प्रति दयालु नहीं है, परशुराम, कोई बलराम उधर है, परशुराम उदाहरण आचार्य लोग की टीका में भी लिखे हैं, परशुराम की उदाहरण दी गई है। परशुराम भगवान के अवतार है, इनको पूरा धर्म अधर्म का ज्ञान है। इन्होंने जानते थे अत्याचारी बन गए कौन, क्षत्रिय लोग जो ब्राह्मण को मारने लगे, ब्राह्मण को वध करने लगे, कार्तव्य विद्याजुन है वध करने लगा उनके जमा उनके पिताजी को, तो उन्हें 21 बार पूरा संसार को निखित्र किए। अच्छा बुरा कुछ विचार किए नहीं, को क्षत्रिय अच्छा है कौन बुरा है ऐसा विचार नहीं किए, सबको ए टू जेड जी जो आया सामने बस समाप्त करना है। जब तक रामचंद्र सामने नहीं आए तब तक चलते रहा उनका फोर्स है। तो इसलिए धर्म की जानने पर भी सभी जीवों पर दयालु नहीं होते हैं, किसी में चाहे बहुत देवता ही या मनुष्य, देवता हो या मनुष्य हो सकता है किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता है। इतने प्रभावशाली होने पर भी वो मुक्ति किसी को प्रदान नहीं कर सकता है, भले ही किसी महान बल क्यों न हो फिर भी वह सनातन काल की शक्ति को रोकने में अक्षम है। काल को कहीं जीता नहीं है, काल को कौन सा ऐसा कौन उदाहरण है, बहुत शक्तिशाली है लेकिन मुक्ति को नहीं जीता है। कितने बड़े बड़े लोग सब आए हैं, काल को कहीं नहीं चल, काल के प्रभाव में सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। जितने सारे जितनी बल क्रिया बन जितने प्रकार के बल ऐश्वर्य जितनी सुंदरता सब कुछ काल के प्रभाव से आस्ते आस्ते नष्ट हो जाते हैं। काल सबको कबलित कर लेता है, जैसे महाभारत युद्ध में भगवान ने विराट रूप को देखा है, अर्जुन ने पूछा आप कौन है, बोले काल अस्मिन लोक क्षयकृत प्रबुद्ध, भगवान काल के रूप में सब कुछ समाप्त, काल के प्रभाव से किसको कोई मुक्त करना अपने को संभव नहीं हुआ। कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्ति हो चुका हो फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी नहीं कर सकता कि भगवान छह ऐश्वर्य से पूर्ण, ये ऐश्वर्य की देवी प्रकट हुई है कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वयं ऐश्वर्य की देवी है। जैसे भगवान छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, ये छह ऐश्वर्य से भी लक्ष्मी भी पूर्ण है। इसलिए भगवान ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य जशसः श्रेय ज्ञान वैराग्यम छन्न इति भगगणा, भगवान ऐसे कहते पराशर मुनि, कहते व्यासदेव जी के पिताजी हैं, पराशर मुनि कहते विष्णु पुराण में कि जो भगवान यदि कोई कहेगा कि मैं समस्त स्वयं भगवान हूं, पर उसके द्वारा भगत छह प्रकार के ऐश्वर्य होना चाहिए है, सबसे धनवान ऐश्वर्य, सबसे ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, वीर्यवान सबसे वीर्य बलवान, वीर्य से जसस जसोसी श्रेय सौंदर्यता और ज्ञान वैराग्य, साथ में दोनों भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए वैराग्य भी होना चाहिए। ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में, फिर थोड़े थोड़े होने से नहीं चलेगा, ऐश्वर्य का पूरा अंतिम सीमा लास्ट है, पूर्ण मात्रा में जिसके पास ये छह ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण व भगवान विष्णु के साथ समक्ष कर सकता है। तो इसलिए लक्ष्मी पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, छह ऐश्वर्य में वो संपूर्ण रूप में पूर्ण है। इसी इसके बाद आज के श्लोक है कि क्वचि चिरायुर्न हि शिवा मंगल क्वचि तत् अपि अस्ति न वेद्यम आयुष, हो सकता है कोई दीर्घायु हो किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। इसी परिप्रेक्ष्य में सिद्धर स्वामी और अन्य आचार्य लोग ने मार्कंडेय ऋषि को उदाहरण देते हैं, मार्कंडेय ऋषि बहुत दीर्घायु है लेकिन इनके आचरण शिव जो शिव संपन्न नहीं है, इस उदाहरण दी जाती है। किसी में मंगलमयता तथा अच्छा आचरण होने पर भी पाए जा सकते हैं किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती है। इसका आचरण अच्छा हो सकता मंगलमय हो सकता, अब किसी मंगलमय तथा अच्छे आचरण दोनों पाए जा सकने पर भी उनकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती है, ऐसा कौन है जिसकी आयु के अब आयु आयु का अवधि निश्चित नहीं है, हो सकता है उसे सदैव सद्गुण के सद्गुण में भरे हुए हैं, उनके मंगलमय आचरण उनकी है लेकिन इनकी परमायु शाश्वत नहीं है, ऐसा कौन है क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को ही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी है ठीक है, उनके आचरणशील संपन्न सब कुछ है, मंगलमय है, लेकिन उनकी फिर भी परमायु पूरा भगवान की तरफ शाश्वत नहीं है, हैं? भगवान के पास भगवान की तरफ शाश्वत परमायु नहीं है, हैं? ब्रह्मा जी का भी 100 साल समाप्त होते ही उनके भी परमायु समाप्त हो जाती है, व अन्य देवता इंद्र आदि जो देवता विशेष उनका भी परमायु सीमित है। इसलिए कहते किसी किंतु किसी की आयु की अवधि निश्चित नहीं होती है, यदि वो उनके शील आचरण सही आचरण वाले हो या मंगलमय, किसी की में मंगलमयता तथा आचरण भी दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन उनके आयु के बारे में कोई निश्चित नहीं होता। न वेद्यम आयुषः यत्र उभयं कुत्र च सोपि मंगलः, जिनके पास में दोनों भी होता है, यद्यपि जैसे अनुवाद कहा यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है किंतु उनकी आदतें मंगल सूचक होती है। शंकर जी का है, शंकर जी का भी कोई आदि उनका भी आदि अंत कुछ बोलना मुश्किल है, उनका भी परमायु का कोई प्रलय के समय में वो भी है, प्रलय कहाँ तक होता है, ब्रह्मलोक तक, इसके ऊपर शंकर जी का लोग कैलाश को, कैलाश भी प्रलय में नष्ट नहीं होता है, हैं? इसलिए कैलाश में भी जो कैलाश के निवासी वो भी शाश्वत रहते हैं, है? लेकिन यही है कि उनकी शील उनके जो आचरण से ये मंगलमय नहीं होता है, है? शंकर जी के साथ कोई तपस्या करके शंकर जी के लोक में जाएगा तो फिर भूत प्रेत ये सब के साथ रहना पड़ेगा, है? उत्पटांग लोगों के साथ, है? कोई पीछे को टांग को नीचे को हाथ करके पीछे ऊपर को टांग करके चलता होगा, किसके 3 आंख होगा, किसके 4 आंख होगा, किसके हाथी का मुख होगा, किसके सिंह का मुख होगा, किसके अलग प्रकार के सब है, अद्भुत जीव रहते हैं। लेकिन तो इसलिए भगवान शंकर जी जैसे देवता उनके शाश्वत परमायु तो है किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होता है, जैसा श्मशान में वास करना, जैसे हमें साधारण देखते भी शंकर जी श्मशान में रहना। अन्य लोग सभी प्रकार के योग्य होने होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही भक्त नहीं होते, महान भक्त है लेकिन उनकी एक ही कमी है, इनकी आचरणशील बने जो अमंगलमय है। सुमंगल कश्चन कांक्षते हैं हिमाम, तो इस प्रकार और जो अन्य लोग जिनके पास में सारे गुण होता सद्गुण होने पर भी भगवान की भक्त नहीं होने के कारण ये सारे सद्गुण बेकार हो जाते हैं, सबके पास और सद्गुण होने पर भी यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की शरण में नहीं है, तो फिर उसके सारे सद्गुण क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। वरन यदि एक ही गुण किसके पास है, कृष्ण ही का शरणम, भक्त ने कहा गया वैष्णव के जितने गुण है 26 गुण में से जिसके पास केवल एक ही गुण है, कौन सा, कृष्ण ही का शरणम, ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये गुण यदि है तो सारे गुण अपने आप आस्ते 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 उसके पास आ जाते हैं, है? उसको प्रयास कर किसे ज्यादा प्रयास करने जरूरत नहीं, केवल यदि एक ही पकड़ के रखा है कि भगवान स्वयं कहे अपि चेतसु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा, अपने स्थिति पर सही स्थिति पर है, यदि वो मेरी शरण में है, एकांत भाव से भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है, तो फिर भगवान कहते कि वो सही स्थिति पर है। क्षिप्रं भवति क्षिप्रं गच्छत् क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छति निगच्छति कौन्तेय पतिजनाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, है मेरे भक्तों की कोई विनाश नहीं होता है, भगवान कहती है। यदि केवल कोई भगवान की चरण कमल को शरणागत होकर पकड़ के रखा है और सारे सद्गुण भगवान की कृपा से उसके पास में आस्ते आस्ते आ जाएंगे, और यदि सब अन्य सारे सद्गुण किसके पास होते हुए एक ही गुण नहीं है, भगवान की शरणागत नहीं है, भगवान की भक्त नहीं है, तो सारे सद्गुण का क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। इसके आगे श्लोक में कहते कि आज अभी जो पढ़ रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी श्लोक आगे कहते कि पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य के देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है कि एवं विमर्श है, विचार विमर्श मैंने विचार विमर्श करने के बाद अव्यभिचारी सद्गुण ही जिनके सद्गुण अभिचाथा अन्य किसी के प्रति जो समर्पित नहीं है, एकमात्र किसके चरण में समर्पित है, अव्यभिचारिणी। व्यभिचारी का अर्थ क्या, व्यभिचारिणी माने व्यभिचारिणी जगह जो घूमना बा कई लोगों में कई पुरुषों में मति रखना। लक्ष्मी ऐसा नहीं है, लक्ष्मी जी का मति एकांत भाव से किसके चरण में है, नारायण के चरण में है। जथा नहीं जैसे हम कहते राधा कुंड के स्थिति में कहा जथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंड प्रियं तथा सर्वो गोपी सुसवाई का विष्णु अत्यंत वल्लभा। यहाँ पर विष्णु शब्द उपयोग की गई है, असली लक्ष्मी कौन है, राधा रानी। राधा रानी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के भी लक्ष्मी है, जे समस्त लक्ष्मियों की स्रोत है कौन, राधा रानी। हाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ही समस्त विष्णु के स्रोत है, सारे विष्णु दीपार्ची रे वही दशांतरमुपेत्य दीपाते विवृत हेतु समान धर्म जस्या दृढ़ वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे भगवान के श्री कृष्ण से ही सारे विष्णु मूर्ति अशेष वैकुंठ लोक में व्याप्त है, अलग अलग रूप में विष्णु। इसी प्रकार समस्त लक्ष्मियों की उत्स कौन है, श्रीमती राधिका राधा रानी है, राधा रानी से ही सब लक्ष्मी आए। भगवान द्विभुज है लेकिन विष्णु चतुर्भुज है, इसी प्रकार राधा रानी द्विभुज है लेकिन सारे लक्ष्मी चतुर्भुज है, तो राधा रानी ही सबके उत्स है। इसलिए उनकी मति कभी भी अन्यत्र नहीं जा सकता, एकमात्र उनकी मति कृष्ण में है, अद्वितीय दिव्य गुण से जो अव्यभिचारी सद्गुण ही है। भगवान गीता में कहते कि युमन अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते ना अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारी भक्ति नहीं है। आज का शंकर आज भगवान को भगवान के चरण में शरणागत हो और कुछ विपद में आ गया तो चलो शंकर जी को थोड़ा पानी, जब उनके कोई ग्रह रिष्ट पड़ गया तो शंकर जी को जाए कहेगा थोड़ा महाकाल के पास पानी चढ़ा दो, ग्रह रिष्ट शांत हो जाएगा, ये नहीं। किसी भी स्थिति में, दुख में सुख में किसी भी स्थिति में एकांत है शरण गोविंद, केवल ही लक्ष्मी की एकमात्र आश्रय कौन है, भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी की एकमात्र जैसे आश्रय कौन है, कृष्ण। कृष्ण की अला दूसरे की हिम्मत ही नहीं जा सकती। तो इसीलिए लक्ष्मी जो कि अव्यभिचारिणी जो सती, तो उन्होंने ऐसे भ्रमण करते करते विचार विमर्श करते करते हैं निज एक आश्रयतया वरम श्रेष्ठ, जो निज एक आश्रयतया अन्य जो इस प्रकार चुनते भ्रमण करते 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 जो अपने पति को चुन रही थी, पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को ही अपने पति रूप में चुनने की निर्णय कर ली, स्वीकार कर लिया, पति के रूप में उनको ही स्वीकार कर लिया। अर्थात अगला श्लोक बोलेगा पत्र वर्णमाला ने माला उन्हीं के गले में डाल दी, किनके गले में, हाँ, क्योंकि वप्रे सर्वगुण रूपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम। यह कह दी कि प्रकृत में भगवान, ये भगवान के पास में एक बदगुण फिर भी लक्ष्मी जी की निकाल दी, सबका गुण तो पहले से बदगुण निकाल निकाल के गए थे, सबका सभी जितने को देखे थे सभी का पास कुछ बदगुण बताए बताए गए थे। अब भगवान के पास में गई वहां खड़े हैं लेकिन भगवान इनकी पास इनकी तरफ देख नहीं रहे थे, हाँ? भगवान सुंदर वो अपने मतलब बस अन्य वर्ष के जैसे उनको जैसे देखे ही नहीं ऐसा है। तो कही कि इनके पास में एक ही गुण है, बदगुण है, मैं जिनको चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं चाहते, सारा दुनिया मुझे चाहता है, ये जितना बैठे है सभा में सभी लोग चाहते थे, किसको, किसको, लक्ष्मी को, हाँ? सभी लोग लक्ष्मी की कृपा पात्र, लक्ष्मी की थोड़ा कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ने के लिए सभी लोग चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते, भगवान उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, ये स्वतंत्र है, हाँ? ये इसलिए लक्ष्मी जी कहते कि मैं इनके पास में एक बदगुण है, ये समस्त दिव्य गुण में आगार होते हुए भी एक बदगुण उनके पास है, मैं इनको चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं चाहते हैं, मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी चाहत भी न थी, वे समस्त दिव्य गुणों और जोगो शक्तियों से युक्त थे। रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम, तो निरपेक्ष ईप्सितम इनको कई पेश में इतने मैंने आसक्ति नहीं था किसको, भगवान को। दिव्य गुण योग शक्तियों से युक्त अतव्य सर्वाधिक, यदि ये भगवान को नहीं चाहते थे लेकिन ये लक्ष्मी सोची कि यही सर्वाधिक वांछनीय है, मेरे पति बनने के योग्य है। ये सोचकर लक्ष्मी ने उनकी गले में वर्णमाला डाल दी। किनकी गले में? भगवान मुकुंद की गले में। मुकुंद, मुकुंद किसको कहते हैं? जो मुक्ति प्रदान करते हैं, मुकुंद। प्रकृति में मुकुंद का नाम केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग है, मुकुंद नाम दूसरे के लिए नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं संदर्भ में कुछ की प्रकृति में मुकुंद जो मुक्ति प्रदान, कोई मुक्ति नहीं दे, दूसरे कोई मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुकुंद केवल मुक्ति देने के लिए योग्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। दूसरे लोग कैसे मुक्ति दे सकते हैं? जब ये हिरण्य हिरण्य कशिपु हिरण्याक्ष दोनों मरे, किसके हाथ में? कौन मारा इसको? हिरण्य हिरण्य कशिपु हिरण्याक्ष दोनों ने, हाँ किसके हाथ? नृसिंहदेव के हाथ में मरे। फिर भी जन्म हुआ ना इनका, मुक्त कहां हुए? फिर जन्म हुए किस रूप में आए? फिर रावण को, फिर रामचंद्र के हाथ में मरे, फिर भी मुक्त थोड़ी हुए, फिर आए, फिर इनका तीसरे जन्म हुआ किस रूप में? शिशुपाल दंत वक्र। जो शिशुपाल दंत वक्र के रूप में जो भगवान के श्री कृष्ण के हाथ से मरे, उनके हाथ में जब इनकी बद्ध हुआ तभी वो मुकुंद, तभी वो मुक्ति प्राप्त किए। मुक्ति तो प्राप्त कर लिए लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं किए थे, इसलिए प्रेम प्राप्त करने के लिए फिर प्रेम पुरुषोत्तम के शरण में आना पड़ा। किनके शरण में? किस रूप में आना पड़ा? जगाए मधाई के रूप में आना पड़ा है। तो इसलिए मुक्ति प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण वहां पर जीव गोस्वामी कहते कि संदर्भ में, भागवत संदर्भ में कहते कि प्रकृत में मुकुंद नाम केवल कृष्ण के लिए प्रयुज्य है। मुक्त कौन करता है? किसी को कोई मुक्त, अन्य अवतार में कोई मुक्त नहीं करता है। मुक्त केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए मुकुंद नाम उनके लिए प्रयुज्य है। इनको वो केवल मुक्ति ही प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी देवी ने आज वर्णमाला डाल चुकी है किसके गले में? है नारायण के गले में, और नारायण को पति रूप में वर्ण कर लिए हैं। इसके बाद फिर अगले श्लोक में से आप देखोगे पूर्ण पुरुष, फिर लक्ष्मी ने मैंने माला डाल के वही साइड में खड़ी रही। भगवान उनकी तरफ अनदेखा जैसे कुछ, कोई उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लक्ष्मी सोचती थी कि अभी मुझे अपने बक्ष स्थल में स्थान देंगे, लेकिन भगवान नीचे मुख करके वो मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा करे, लेकिन भगवान पूरे अनासक्त, किसी कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे ही उपेक्षा, इनके प्रति कोई इनकी अपेक्षा भी नहीं है। किसके प्रति? लक्ष्मी के प्रति है। तो इसके आगे क्या होगा, फिर अगले श्लोक में इसकी चर्चा आगे आएगी। तो आज यहीं पर आलोचना बंद कर दे। कोई किसके प्रश्न है? 5 मिनट समय है, 5-4 मिनट। हाँ प्रश्न उत्तर, हाँ बोलो। बैठा बैठा सब है, भागना नहीं। प्रश्नोत्तर भी सुनना चाहिए, बैठो। कहाँ है, कौन प्रश्न पूछ रहा था कभी?
हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान की तरह क्या लक्ष्मी जी भी सत ऐश्वर्य हैं उनके यहाँ?
लक्ष्मी जी,
लक्ष्मी जी के पास भी 6 ऐश्वर्य हैं।
हाँ, पिछले तात्पर्य में लिखा हुआ, प्रभुपाद जी लिखे पिछले तात्पर्य में, ऐश्वर्य जी की देवी है ना, वो ऐश्वर्य जी की देवी है लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पास भी 6 ऐश्वर्य हैं, पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे। हाँ, और कोई प्रश्न है? और कोई किसके?
महाराज जी हरे कृष्णा।
यहाँ अच्छा कोई पूछ रहे हैं। हाँ बोलो बोलो।
समुद्र मंथन हुआ तो एरावत हाथी उत्पन्न हुई, तो उससे पहले देवराज इंद्र किस एरावत पर बैठ कर हा रहे थे? एरावत का जन्म तो समुद्र मंथन से हुआ था।
हाँ।
उससे पहले फिर एरावत हाथी कहाँ से, वो कैसे?
इसके पहले इंद्र के पास में ऐरावती ऐरावत हस्ती था कि
नहीं?
बस है? उसका पहले भी था
जी,
तो था तो ये सब जैसे ही जैसे यहाँ पर लक्ष्मी भी पहले थे, अब ये फिर लक्ष्मी आ रहे। सो लीला के लिए भगवान की लीला वैचित्र है, भगवान ने लीला ऐसे ही इसके एक एक है फिर निकल रहे हैं। ठीक है, और कोई? हाँ, और कोई पूछने वाला?
महाराज, ये समुद्र मंथन जो हुआ तो पर्वत के ऊपर भी भगवान ही विराजमान रहे और नीचे भी वो कच्छक रूप में हुए, तो देवता दानव
मंथन भी कर रहे थे, स्वयं भी मंथन भी कर रहे थे देवता,
लेकिन वो देवता दानव का तो कुछ श्रेय नहीं है, वो तो भगवान जैसा चाहे वैसा निकलते गए समुद्र।
हाँ,
से
हाँ।
कुछ ये नहीं
तो सब कुछ भगवान ही करते हैं, ईश्वर भगवान के हैं,
तो खाली देवता दानव को
रखे, भगवान का अपना लीला करना ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायाया, जैसे परिचालित करेंगे भगवान ऐसे ही सब लोग चलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मत है काष्ठर पितुड़ी जना, नाचाओ से मत है। भक्त जानते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, करने कराने वाले एक ही है। साले महाभारत युद्ध में युद्ध हो रहा था लेकिन सो कर रहा था कौन? वो एक देख रहा था सारा युद्ध, लास्ट में सब लोग सोचते पांडव लोग कौन क्या किया, सब अपने झगड़ा करते थे। भगवान कहे कि एक देखा महाभारत जो चलो उसके पास, वो भीम का पुत्र था है, वो देखा है उसका पहले बारबरी जब पच्चे पूछे जाकर क्या देखा, बोले मैं क्या देखा, बस देखा एक चक्र आ रहा था सब कट कट के जा रहा था। भगवान करेंगे मेरे लोग तो पहले विराट रूप में भी दिखा दिए, अर्जुन का मुख अर्जुन देखा भगवान के मुख से, सब भीष्म द्रोण आदि जितनी बड़े बड़े वीर है सब भगवान के काल मुख में पीछे जा रहे हैं, तो सब करने कराने वाले भगवान ही होते हैं, लेकिन क्या है निमित्त मात्र भव सभ्य, तुम निमित्त बनो और जस लाभ करो, ये भगवान चाहते। जब भगवान की भक्ति करता है भगवान अपने भक्तों को जस प्रदान करते हैं। ले लक्ष्मी को भी, लक्ष्मी तुम्हारी किसके चरण में, भक्तों के चरण में भी गिरती है, कैसे गिरेगी है, जैसे भगवान की भक्ति की कौन बलि महाराज ने है? बलि महाराज के प्रसंग में सब कुछ बलि महाराज जो सर्वस्व दे दिए भगवान को, अपने गुरु किसके शुक्राचार्य जी की बात भी नकार दिए, तीसरे पैर भगवान पर पूछे कहाँ रखूं, अपने सिर झुकाए सिर दिखाए, बोले सिर भी अभी शरीर मेरा अधीन है प्रभु, इसको भी अपना लीजिए ये भी ले लीजिए बाकी, इसलिए सिर पर भगवान ने चरण रखकर तीसरा चरण सुतौल लोक में भेज दिए, और वो भेज दिए था लेकिन बलि की भक्ति में बंध गए, वहां पर दरबान होकर खड़े रहे, दरबान होकर बलि के दर्जे पर खड़े रहे भगवान वैकुंठ में। भगवान लक्ष्मी जी कहे कहां गए मेरे पति, लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते पूछिए नारद जी रास्ते में मिले कहीं पूछिए, नारद जी कहे आपकी पति चौकीदारी कर रहे उधर, और लक्ष्मी तो चिड़ गई बुरा है, बोले कि क्या तुम्हारे सबके साथ मजाक करने की कोई सीमा होता है, जानते किसके साथ बात करते हो, मैं इसे जगह देवी हूं। बोले देखो माता जी हम आप पूछे मैं जो देखा बता दिया, आप जाओ चौथा लोग तीसरे लोग सूत्र लोक में दर्जे पर खड़े है बड़ी महाराज के दर्जे, वहां जाके पहुंचे लक्ष्मी देखी कि बोले खड़ा है भगवान नीचे, लक्ष्मी देखो नीचे मुख कर लिया है, कह कि मैं क्या करूं, तुमको चाहिए मुझे फिर बैकुंठ चलू तुम्हारे साथ, इससे परमिशन लो, किसे बलि से, बलि आपने भक्ति के बल पर मुझे बांध दिया है, बलि पूजन, इसलिए हमारा जो गोवर्धन पूजा होता है गिरिराज की पूजा उसमें लिखा जाता है कैलेंडर के नीचे बलि दैत्यराज पूजन, उसी दिन गोवर्धन की पूजा के दिन उसी दिन बलि दैत्यराज का भी, दैत्यराज भी पूजन किए थे लक्ष्मी का, लक्ष्मी भी पूजन की थी किसका, बलि दैत्य परस्पर को पूजा किए थे, लक्ष्मी ने बलि महाराज को अपने भाई है भाई रूप में स्वीकार की है। उस दिन गई तो लक्ष्मी जी बलि महाराज जो लक्ष्मी ने जाए कि कहे कि मेरे को वापस दे दो, किसको मेरे पति को वापस कर दो, मेरी भक्ति बल में तुम बांध लिया, लेकिन और तो किसी बंधन में बांधते नहीं है मेरे पति, एक बंधन में बांध जाते किसमें, जो व्यभिचारिणी भक्ति करता है, है? बांध लिए थे तो अब तो वापस कर दो है? तब बड़ी महाराज ने अपने सिंहासन से उठ के भी लक्ष्मी जी की पूजन किए, ऐसा मत कीजिए आप श्री जी अशोक जी की देवी है, आप मेरी पूजन करोगे तो क्या होगा है? तो लेकिन भगवान भी कहे कि बड़ी चिंता मत करो, स्वर्ग को तुम्हें राजा बना, स्वर्ग को आप इंद्रपद दे दिया, इंद्र ये जो इंद्रपद तो उसको दिया, लेकिन अगला जो मनंतर आएगा है वो मनंतर में तुमको मैं इंद्र बना दूंगा, किसको? बलि महाराज को। इसलिए भगवान किसी पक्षपात नहीं करते हैं, हैं? हैं? अभी इंद्र तो चलो उसको उसको दिए मंत्र जो वो बन गया है, लेकिन बलि महाराज भी भविष्य में इंद्र बनेंगे। अगला मनंतर में फिर कौन बलि कौन इंद्र बनेगा? अगला मंत्र में बलि महाराज ही इंद्र बने के बैठेंगे। भगवान पक्षपात नहीं करते, जो भक्ति करता है अवश्य भगवान उसको उसके पक्षी बात है। नमे नाहं ने समहं सर्वभूतेषु नमे दृष्टि न च मे प्रिय जे भजन्ति तुमां भक्त्या मैते तेषु से अपि जे अपि महं। जो मेरी भजन करता हूँ मेरे निश्चित रूप अवश्य उसके पक्ष लेता हूँ। बड़ी महाराज तो अभी तो समुद्र मंत्र हो गया, लेकिन बड़ी महाराज भी महान भक्त है, बारह महाजन में से एक महाजन है। यदि वो ये राक्षस की प्रतिनिधित्व करते समुद्र मंथन में, लेकिन इंद्र कोई महाजन नहीं है। इंद्र इस स्तर बड़ी महाराज के स्तर पर भक्ति नहीं की है, हैं? राक्षस कुल में जन्म होती हुई भी प्रहलाद महाराज और बड़ी महाराज दो महाजन है जो भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं, हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।